ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤ ਮਨੋਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਰਹੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਵੱਖ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੈਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਚੋਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਕੀ 30 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਲੈਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਖ ਬਾਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ 30 ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਪੱਟ ਹਨ, 15 ਭਗਤ ਹਨ, 11 ਪੱਟ ਹਨ, 4 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਥਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੌਦੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਹੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਿਆਰਾਪਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਸਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ ਹਰ ਦੋ ਮੇਸਤਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਹਸਤੰ ਕਿ ਹਵਾ ਮਜ਼ਬ ਅਜ਼ਮਨ ਹਸਤੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਖਿਆਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੈ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਵ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ उस वेले दे फकीर पीर या मुफ्ती ने पूछा सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को एक गल गुरु गोबिंद सिंह जी दसो पी मजहब तुम्हारा खूब कि हमारा खूब बस ये है न्यारापन साडा पी मजहब तुम्हारा खूब कि हमारा खूब ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोले तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब ये है न्यारापन तुमको तुम्हारा खूब हमको हमारा खूब जिस वेले संसार उते धर्मां उते ये बात आ जाएगी उस वेले सिख दा न्यारापन तां दुनिया नूं दिसेगा अखबारां कालियां हो गई हूँ भी कालियां हो रही हैं एक ऐसे मसले उते हिंदुस्तान अंदर कि एक अयोध्या है उते एक मंदिर है एक मस्जिद है अते देखते देखते सारा हिंदुस्तान उसकी लपेट च आ गया है क्योंकि कोई ये नहीं सहार सकता कि मंदिर ते मस्जिद भी इकट्ठे हो सकते हैं पर जिन्हें जरा भी साढ़े इतिहास का पता है वो जानते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस स्थान ते आप दा प्रकाश होया है उसका नाम है कूचा फारूक खान उस गली का नाम है कूचा फारूक खान अते जिथे हरमंदर साहिब है उस दे नाल वेड़े विच ही बनी हुई मस्जिद है अते जिस पासों असी मत्था टेकन जाने तुहाडे चो कोई ना कोई पटना साहिब जरूर गया होएगा जिस रस्ते असी मत्था टेकन जाने हैं इस दे सज्जे पासे दरवाजा है एक पासे खब्बा दरवाजा जिसों मत्था टेकने हैं तख्त श्री हरमंदर साहिब एक गुरुद्वारे का दरवाजा है जिथे असी जोड़े रखने हैं पटना साहिब उस दे सज्जे पासे मंदिर का दरवाजा है ये भी आप ही तुसी जान लो कितना न्यारापन होएगा साढ़े धर्म का हूं भी असं कभी नहीं कहा सवेर वेले मस्जिद विचों अजान की आवाज क्यों आती है साढ़े मुँह चो कभी नहीं निकलिया कि मंदिर भी सवेरे टली क्यों बजती है यही कारण होगा कि कलगीधर महाराज के मुख विचों ये वाक जिसले निकलिया पूजा और निवाज उ ना पूजा च फर्क है ना नमाज च फर्क है ये सिख का न्यारापन संसार तो वखरा है अलहदा है यही गल सी जी साढ़े इतिहासकार ने या अज के इंसान ने जिन्होंने पढ़िया उन्होंने कहना पाया कि इसके न्यारेपन देखो इस ना समझिया जे कोई वक् बात हो के संसार तो विचर रहा है इसका न्यारापन यह है खालसे का सिख का कि इसने सब तो पहला सानू निरपहर कर दिता पट कहते ने कि हे गुरु पिता या हे गुरु पातशाह तुसा लोगों को निरपहर कर दिता या जिवें भाई गुरदास जी ने फरमाया है कि गुरमुख पार अथर्बन तारा इस गुरु ने आके बाणी राही जो मेरे सिर ते भार पे हुए सन ना वो उतार के रख दिते मैं हल्का फुल बना दिता ये है न्यारा मेरे तो कोई भार नहीं है क्योंकि सिद्धांतक तौर पर गुरु अर्जन महाराज का हुक्म हो गया बो शास्त्र बो स्मृति पेखे सर्ब ढंडोर जे गुरु अर्जन पातशाह वर्गे पातशाह ने सारिया शास्त्रां ते वेदां नूं पेख लिया है देख लिया है कहते ने मैं सारे देख ले हन पेखे सर्ब ढंडोर पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल ए कोई भी इन्हां विचों उथे नहीं पुज रहा जिथे हरि नूं पुजन का कोई राह है सारे कुंतर हन सारे कोई अठकेलियां दिमाग दियां या उचाइयां नूं छूण की कोशिश कर रहे हैं इसी न्यारापन जो पिता ने सानू दिता ताकि असी शब्द दे राही उस प्रभु नूं पा सकीए अते इस न्यारेपन अंदर सब तो ज्यादा जरूरत है जो सानू उन्होंने समझाई कि सानू पता लगता रहे कि साढ़े न्यारेपन उत्ते किस किस थां उत्ते कोई चोट मारदा है मैकालूफ ने जिस वेले छे हिस्से लिखे ना सिख इतिहास दे ते पछम दे लोकां नूं कहन लगा हे सारे संसार दे लोको मैं तुहाडे लई एक ऐसा धर्म लैके आया हाँ जिस विच ना बुध पूजा है, जिस विच ना पाखंड है, जिस विच ना वर्त है, जिस विच ना कोई संजम है, जिस विच ना जात है, जिस विच ना पात है, जिस विच विधवा औरत नू साड़ की सती नहीं किया जाता, जिस विच औरत नू गुलाम बना के बंदी नहीं किया जाता, जिस धर्म के अंदर सिवाए शुक्र तो, सबर तो, संतोख तो, न्याय तो, दया तो सिवा कुछ भी नहीं है। अते सब तो बड़ी गल, इस विच ना कोई नशा है, अते ना इस विच कोई तंबाकू वाली इल्लत है, ना इस नू कदी ख्याल आया है कि मैं तीर्थ तो कुछ ले सकना हाँ, ये शब्द तो सब कुछ ले। इस वास्ते पच्छम दे लोको मैं तुहानू दस रहा हाँ कि ये धर्म उचेरा धर्म है, अते उसका शब्द है हाई रिलीजन है, ये कोई छोटा धर्म नहीं है, इतना हाई रिलीजन है। इसकी ऊंचाई नू पाउण लई हर सिख जिस वेले अमृतधारी हो जाता है, उसका ध्यान हमेशा ये रहता है कि जो मेरे गुरु ने मेरे लिए आदर्श बनाया है उसनू मैं छोड़ का यतन करा। इस करके न्यारा है कि इस दे हर सिख विचों किसी ना किसी वेले तुसी गुरु का अक्स देख सकते हो। अते एक होर योगी जो साड़ी सदी का योगी है, जिसनू सारी दुनिया जानती है, अरबिंदो घोष, अते जिस दे पांडीचरी जिस दे जीवन विच भी बाद विच भी एक नगर बन गया अरोविल, के अरविंदु दे नाम ते एक नगर वसिया है, जिथे लोग कहंदे ने योग सीखण लई जांदे ने, या संसार दे लोग कहंदे ने कि इस सदी दा जिंदा योगी कोई होया है ते अरविंदु घोष है। उसने किताब लिखी है इटरनल इंडिया, वो हिंदुस्तान जो कदी मरेगा नहीं, उस विचों ने एक चैप्टर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अते एक चैप्टर सिखी बारे लिखा है। मैं इसलिए सुना रहा हाँ कि सिर उच्चा साडा कितना है संसार उते, भावें कोई लिखारी निकालू वर्गा है, भावें कोई इतिहासकार टाइम भी वर्गा है, भावें कोई योगी अरबिंदू वर्गा है, भावें कोई विज्ञानी अज दी दुनिया अंदर कोई साइंसदान वर्गा है, वो भी ये गल जोर नाल कहेगा कि सिख धर्म का न्यारापन संसार तो वखरा है। उसमें किसी ने पूछ बैठा छेड़ से बड़ा निशानों में, साढ़े च की ऐसे इंसान नहीं हैं जो मूर्ख पुणी चाख जाते ने, गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है। मेरा ख्याल है तुहाडे कन्नां च कई बार कोई आवाज पाँदा होगा, पाँदे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है। तो जिस वेले कोई अनजाण पुणे च ये आखे गुरु ग्रंथ साहब पंजवा वेद है, इसके अर्थ से हुए ना कि चार जो वेद हैं वो भी पढ़ने बड़े जरूरी हैं, तो हुक्म तो सानू यह है कि मैं सारे पढ़ के देख रहे हैं कुछ नहीं। जिस वेले मुख विचों ख्याल पैदा होएगा ये वेद है, उसी वेले इंसान वेदां वल जाना शुरू कर देवेगा। ये गल योगी को किसी ने पूछी, अरविंदू को पूछी कि धर्म तो सारा उन्हें को लिया गुरु नानक साहब ने, अभी साढ़े चू कई कह देंगे जी तर्जमा होया है जी, लिखत च आ गया जी, उन्होंने लोगों समझ नहीं सी आती, इस करके इस बोली अंदर कह रहा। वो क्योंकि योगी सी त्रै काल जी जानता सी, तो इटरनल इंडिया पुस्तक लिखता है ये गल सारे अच्छी तरह जान लवो कि सिख धर्म एस्टोनिशिंगली ओरिजिनल एंड नॉवल है। हैरान कुन की हद तक ये जो धर्म है ना, ये मूलक है अते न्यारा है। ये कितना मूलक ते न्यारा है, कहंदे इसकी एक गल ही देखो, इसने इंसान नू वाहेगुरु दे दीदार कराने ने अते कितना आसान तरीका दसिया है। ए हुण पुछणा तुहानू जिहड़े आके कहंदे ने तुहानू मैं तली ते वाहेगुरु दिखा देना हाँ, तैनू मस्तक ते दिखा देना, ये त्रै काल दर्शी जो योगी है कहंदे इसलिए एस्टॉनिशिंगली ओरिजिनल ते नावल है, ये वाहेगुरु नू प्रतख दर्शन करवांदा है ते बड़े आसान तरीके नाल करवांदा है। अते जो उसने लिखे उन्हें तो इन बिन सुनाना ताकि पता लगे कि न्यारा धर्म साडा क्यों है। आखदे एक आसान तरीका गुरु नानक दे गए कि गुरु प्रसाद का बीज पा दियो, गुरु प्रसाद का बीज पा दियो, सोना शुरू कर दियो, एक तना बन जाएगा, एक मुड़ बन जाएगा। बीज गुरु प्रसाद का पाद्या सोना शुरू कर दिया, एक तना बनना शुरू हो जाएगा, मुड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो जे शब्द को सुन के मनना शुरू कर दियो, विचो शाख निकल आएगी, इस विचो एक टाणी निकल आएगी। तो कहिंदा जे जरा भी ध्यान नाल शब्द को सुन के एकाग्रचित हो जाओ, इस दे शाख में एक फुल लग जाएगा, खुशबू आ जाएगी। इस तरह लगेगा जिवें तुहाडे सारे शरीर अंदर खुशबू पैदा हो गई है। अते जरा कु लमेरे ध्यान तो बाद वाहिगुरु प्रतख दिखाई देन लग पवेगा। इस तो कहिंदा हैरान कुन बात होर की हो सकती है कि सिर्फ गुरु प्रसाद का बीज पान नाल इंसान नूं प्रतख दर्शन हो जाण। इस दी व्याख्या जितनी मर्जी करिए सुनहरेपन दी, अते आप गुरु पिता ने सानू समझाया भी कि इतना निहरापन है इसका, शरीर रूपी खेत नू पहला सवाल, अते इस विच शब्द दे अखरां दे बूटे ला दे। कितना आसान तरीका है, पहला शरीर नू सवाल, शरीर नू सोहना कर, अते शरीर नू सोहना करन तो बाद इस विच शब्दां दे अखर दे बूटे ला दे। देखते देखते एक बाग बन जाएगा। पिता कहंदे ने कि देखते देखते एक बाग बन जाएगा। जिसले बाग बन जाए, खिड़ जाए, इसनू पानी देंदे रही, अते पानी दे प्यार दा, जिस वेले प्रेम दा पानी देगा, देखेगा कि एक फल अपने आप इसनू लग गया है, वो नाम दा है। हुण मैं तुक पढ़ लगा, इस तो आसान रस्ता होर है कोई नहीं। पिता फरमांदे ने अखर बिरख शब्द दे बूटे नू लाना शुरू कर दियो। कितना आसान तरीका है कि जिस तरह वो बूटा लांदा है ना, गोडी करदा है, अखर बिरख बाग पोई चोखी खूबसूरत जमीन सवार, अते सिंचत भाव करई सबना फल लागै एको नाम। हर एक नूं इह नाम दा फल लग जाएगा। यह नहीं कि किसे साधु नूं लगेगा तो ग्रस्ती नूं नहीं लगेगा, यह नहीं कि उदासी नूं लगेगा तो करम किरत करन वाले नूं नहीं लगेगा, यह नहीं कि किसे प्रचारक नूं लग जाएगा तो उस दुकानदार नूं नहीं लगेगा। यह है इसका न्यारापन। तो वह आखदा है कि इस तो आसान रस्ता और है कोई नहीं कि अखरां दे जो गुरु पिता ने दिते हुए हैं धरती में सवार के ये बूटे लाने शुरू कर दे, ऐसा बाग बनेगा। सिर्फ प्रेम की इस चाशनी, प्रेम का जल देना बड़ा जरूरी है। इस करके इस धर्म को संसार ने हूँ भी अगे भी इसके न्यारेपन इतों ये जान लवो कि किसी को कुछ लेंदा नहीं है। ये भी गल मैं समझना, एक बहुत बड़े सियाने बंदे ने, असी तो घट कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर दुनिया हम बड़ी कोशिश कर रही है। जिमें एक कोशिश हुई कि दुनिया दी 100 मावां लभो, किहड़ियां 100 मावां हैं जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर एक कोई ऐसा इनकलाब लै आंदा कि उन्होंने बेटे पैदा हुए तो अज तक वो बेटे याद ने, मावं भुल गई ने, वो किहड़ियां मावं ने। जिमें साढ़े इतिहास में भी किताब छपी है 100 ग्रेट मदर्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया दी 100 मावं, असी तो एक आसान तरीका लभिया ने, दुनिया दी सिर्फ 2.5 मावं ने। असी गल मुका दी पंजाबियां ने कि सिर्फ दुनिया से 2.5 मावं हुई ने, पहली माँ बाबा फरीद जी, दूजी माँ ध्रुव जी, तीजी माँ कहते हैं अद्धी सी ये है गोपी चंद जी। ख्याल है संसार का अद्धी माँ पहला लाया सू, जिमें मावं कर दिया ने पहला पहला तो कहन गया जपजी याद कर, पाठ कर, अमृत वेले उठिया कर। तो जिस वेले जरा को समझ आने लगती है ना, उस वेले कहती है किरत करया कर, बाहर जाया कर, की तू करना पे है, देख तेरा पढ़ा कितने अगे बढ़ गया। गोपी चंद जिसले जरा कुछ समझ उस आ गई तो माँ फिर रोन लग पे, कहते अद्धी माँ है, फरीद की माँ पूरी है, क्योंकि जब तक फरीद नूं अल्लाह का पूरा दीदार नहीं होया, फरीद की माँ ने छड़िया नहीं है। कहन का भाव है, इस तरह एक पुस्तक बड़ी मशहूर पुस्तक है, जब तो दुनिया बनी है अज तक 1984 तक, उस बंदे ने कोशिश की थी कि दुनिया चो 100 बंदे लभो जिन्हां दी सारी तालीम ओरिजिनल है, नावल है, हैरान कुन है। उन्हें फिर किताब ही लिखी 100 ओरिजिनल थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। लिखने वाला है ग्रीन। मैं अगर बेनती वरिंदर सिंह जी ने की थी, प्रबंधक ने की थी, जिड़िया संसार दिया मुढ़िया पुस्तक साढ़े धर्म बारे इतना मेहनत बाद लिखा है, इसको सुनाना जरूरी है ताकि अज का बच्चा किसी गलत किताब को पढ़ के होर पासे न जाना शुरू हो जाए। उस उन्होंने हिंदुस्तान विचों 4 बंदे चुने, ये हैं ओरिजिनल। बाकी ना लैन की लोड़ नहीं है, किताब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा वो 4 केड़े हैं जिन्हों की ओरिजिनल थिंकिंग है। एक विचोना साहिब गुरु नानक देव जी महाराज लिखिया कि एक गुरु नानक ऐसा है जिसने किसी को कुछ लिया नहीं है, सीधी वाहेगुरु को दात लैके इसने अपने पंथ में सिख में दी। तो उन्हें लिखते ओरिजिनल है कि गुरु नानक साहब को बाकी तो बड़ा कुछ समझाया उसने अपने 4 सफ़ियां के लेख अंदर कि यह ओरिजिनैलिटी है गुरु नानक साहब की। पर कहिंदा एक गुरु नानक की सब तो वड्डी मूलक देन है, ओरिजिनल देन है, वो ये है गुरु नानक ने वेचिया कुछ नहीं, दिता ही दिता है। गुरु नानक ने वेचिया कुछ नहीं है। हुण तुसीं देख लैना दुनिया के बहुते धर्म, बहुते इंसान अज साडे सामने चीज़ नूं वेचणगे जरूर, जे उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए। गुरु नानक ने दुकान नहीं पाई, उसने वंडिया ही वंडिया है, दिता ही दिता है। ये गल जिस वेले उन्होंने लोगों ने पढ़ी, फिर दूजी गल उसी योगी ने लिखी उस पुस्तक अंदर, आखदा है ये धर्म फिर इतना ओरिजिनल क्यों हो गया। वो बारे उसने अंग्रेजी का शब्द वरत्या, तर्जमा करने गलती पुल हो सकती है। कहिंदा है आउटब्रेक ऑफ फ्रैश एक्टिविटी। इंज समझो जिमें कोई ज्वालामुखी फटता है ना, वो सजी की ताज़ी चीज़ निकल आती है। सिख धर्म इस तरह है जिमें गुरु नानक देव जी दे महाराज के आवन बाद जिमें धरती अंदर कोई ज्वालामुखी फट गई होवे, अते उस दे बाद जो कुछ खिल रहा है सारा नवीन है, नावल है, ओरिजिनल है। इस विच इस तो वड्डी ओरिजिनैलिटी यह है सिख धर्म की कि किसी वेले भी साढ़े उत्ते ना कर्म का पहाड़, ना संजम का पहाड़, ना धर्म का पहाड़ पाया। यो गल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत छकाण वेले कही सी, जिसले अमृत आपने प्रदान कर दिता, आपने हथ जोड़ के दात ले ली। उस वे एक तकरीर की थी, वो तकरीर एक इतिहासकार ने फारसी अखर अंदर इन बिन लिखी है, पुछाई औरंगजेब नू है कि यह होया है आनंदपुर साहिब दे विच जिस वेले अमृत साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने छका दिता। एक उन सब नू ये भी याद रहे कि जड़ा हुक्मनामा महाराज ने भेजा सी ना सारे हिंदुस्तान या देसां प्रदेशां नू, उस वेले हुक्मनामे दे शब्द ये सन, जे तुहाडे घर 2 बेटे हैं एक आनंदपुर भेज दिओ, जे तुहाडे घर 4 बेटे हैं 2 भेज दिओ। एक कारण सी कि आनंदपुर विसाखी वाले दिहाड़े 80,000 की हाजिरी हो गई सी, उहदे विचों 20,000 ने अमृत छकिया सी। जिस वेले अमृत की दात दे चुके ने ते क्या ने ऐसा धर्म जिहड़ा तुसां हुण अपना लिया खालसा बणी हुण आप बणिया, इस वी 4 चीज़ां नूं मैं सिखां अंदर नाश कर दिता है। यह है साढ़े धर्म की सब तो वड्डी ओरिजिनैलिटी या इसका न्यारापन, जिसनों कोई पुरोध, जिसनों कोई विपर या जिसनों कोई अज संसार से जान नहीं सकिया। असी अपने न्यारेपन से आप ही चोट मार रहे हैं, आप ही कई बार उन्होंने ऐसिया रीतां जिहड़ियां पिता ने आप खत्म कीतियां उन्हों असी संसार से प्रचारन लग पैने। उस वेले महाराज ने कहा मैं 4 चीज़ा नाश कर दितियां तुहानू खालसा बना के। सब तो पहला धर्म नाश। हुण कोई इंसान ये नहीं आखेगा कि फलां धर्म के अंदर सब तो उत्तम है, फलां धर्म के अंदर पई हुई जड़ी चीज़ है उस तो बगैर किसी का गुजारा नहीं होना। अज मैं सारियां विच ये आख रहा, सारे वाहिगुरु के बेटे हैं, वाहिगुरु की जाए हैं। दूसरे ने कर्म नाश कर दिता। हूँ कोई कर्म से टीक न रखे, हूँ कोई ये ना आखे कि कर्म करने तो बाद कोई वस्तु किसी को मिल जाएगी, कर्म में नाश कर देता है। अदे तीसरा किरत नाश हो गई, कोई किरत का अभिमान भी ना करे। कोई अगर मजदूर है, कोई दुकानदार है, कोई व्यापारी है, कोई सौदागर है, अते जे कोई शाह है, ये ना ख्याल कर लग पै ना कि जेड़ा शाह बैठा है दुकान उते ये कोई कटिया है, जेड़ा शाह है दे रहा फाइनेंस ये कोई कटिया है, जेड़ा व्यापारी है कोई उत्तम है, दुकानदार ये कोई होर है। यो गल गुरु रामदास महाराज ने कही सी। साहिब गुरु अर्जुन महाराज ने गुरु रामदास बारे कही सी कि तुसा महाराज एक गल सानू समझा दिती है, शाह व्यापारी एक है ठाठ, हूँ किरत की कोई अभिमान नहीं कर सकेगा, ताकि किरत जेड़ी है सारे ये नाश कर दिती है, कोई अभिमान कोई किरत का ना करे। अते सब तो वड्डी गल कुल नाश कर दिती है, हुण कुल का कोई अभिमान नहीं करेगा, क्योंकि आम तौर उते जिस वेले कोई बोल रहा है तो आखद है रघु कुल रीत चलिए आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसका मतलब है कि रघु दे राजा रघु दे खानदान नहीं सिर्फ प्रण पालना चाहिए, किसी होर नहीं पालना चाहिए। एक कहते रघु कुल रीत चलिए आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। इसका अर्थ है कि एक कुल वाले पालना चाहिए, बाकी कह के बिशक मुकर जाओ। महाराज कहने लगे ऐसा नहीं है, कुल उल्लास हो गई है, कुल का अभिमान कोई नहीं करेगा। इस करके मैं न्यारापन धीरे बना रहा हाँ, दे रहा हाँ कि हूँ वाहेगुरु का खालसा है, हूँ कोई किसी होर वाले चाकेगा नहीं। एक गल फिर मैकालिफ ने अपनी छे वॉल्यूम अंदर भावें कोई वो किताब चुक लैनी, ऐसी इतिहास वरती सू, हर किताब के पहले सफे ते गुरु अर्जन साहब की एक तुक लिखी सू कि ये मैं दुनिया में देन आया हाँ, यह है साहिब गुरु पिता की सब तो न्यारापन ते देन। उते लिखदा है अपनी पुस्तक के हर पहले सफे ते, फूटो आंडा परंका मणि प्यो प्रगास, काटी बेड़ी पगे ते गुरु कीनी बंद खलास। इस धर्म ने भरम का आंडा तोड़ दिता है, लोगों ख्याल से अंडे च है की है, उन्होंने तोड़ के दस दिता है भरम च कुछ भी नहीं है। फूटो आंडा भरम का, क्योंकि आंडे च पता नहीं हुंदा की पिया होया है, उन्होंने तोड़ के रख दिता तो इतना प्रकाश दे दिता मना अंदर कि पैरां विच पईयां सारियां बेड़ियां आपने तोड़ दितियां। हुण सिख नू किसे वेले भी ना भरम दी ना भय दी कोई भी गुंजाइश किसे पासे नहीं रही। अते यही कारण लगता है कि आपने गुरु अमरदास महाराज ने जिसले ये बचन किया कि साढ़े घर भगती निराली है, ताकि सिख भी निराला संसार तो दिसे, ये तुक उनके हर सिख में याद चाहिए है, ताकि किसी वेले भी वो अवतार भगती च ना पै जाए, बुद्ध भगती च ना पै जाए, कोई होर भगती च ना पै जाए। पिता का फरमान है गुरु अमरदास महाराज का, भगत निराली अलादी जापै गुरु विचार। ये जी साढ़े घर च भगती है, ये निराली भगत है, मैं भगती अल्लाह दी दे रहा हाँ, क्योंकि सारी दुनिया कहती सी भगती नहीं हो सकती जब तक कोई व्यक्ति न होवे, भगती नहीं हो सकती जब तक कोई बुत न होवे, भगती नहीं हो सकती जब तक कोई अवतार न होवे। ये ख्याल सारी दुनिया च होनी है, अगे भी संसार ते रहेगा। गुरु अमरदास कहन लगे बिल्कुल नहीं, भगत निराली अलादी, जेड़ी भगती मैं सिख नूं समझा रहा हाँ ये निराली भगती है, इस विच अवतार भगती नहीं है, शख्सियत की पूजा नहीं है, इस विच कोई किसी बुत की पूजा नहीं है, इत्थे ते सिर्फ जप है गुर विचार। इसलिए गुरु अमरदास महाराज जिस वेले आप को जो कुछ करते सन कोई सानू समझा के चले गए कि पिछ पैर रात पिछल जो रहे, कर इशनान एकांत में बहे, ते करी की एकांत अंदर गुरमूर्त हृदय ने धारे, वाहिगुरु दी होंद नू अपने हिरदे रखे, अते नाल गुरबचनी हर नाम उचारे, शब्द रही नाम नू पढ़े फिर प्रकाश हो जाएगा। इसी न्यारापन जो आपने सारी दुनिया नू दिता, अते इस तो बड़ा न्यारापन की दसोगे, ना खान दी पाबंदी, ना पहनन दी पाबंदी, ना किसी सिर्फ रैत मर्यादा ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਪਟਕਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਵਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਫਾੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲਿਸੇ, ਸਪਲਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਛਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ 'ਚ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਅਥਰ ਬਨਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਜੰਤਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟ ਬ੍ਰਸਟ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਪਣਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁੱਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਟੀਕਾ ਦਰਪਣ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 38 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਨਾਮੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਇੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਕਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ अपने सिंहासन से बिठा दिता। उन सिंहासन से बिठाने के लिए जो उन्होंने बचन कहे ने यही है गुरु रामदास, उस वे मुख चो निकलिया ने जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साविद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुरु संग कीड़े हम था। जरा को बख्शिश मिले सब तो पहला इंसान गुरुद्वारा पुरजा है, गुरु पुरजा है, उसमें ख्याल पैदा हो जाता है खुद कितों आया, छतर तख्त पे बैठे ने चौर हो लगी है ते कहंदे ने जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा। लाहौर याद आ गया, चूने मंडी याद आ गई कि जिस वेले मैं चूने मंडी चो निकलिया हाँ मैं बरादरी दे ताने मेरे को खाने भी कुछ नहीं, छोटा मेरा भरा है, निक्की मेरी भैन है, कोई मेरा साथी नहीं है, सिर्फ नानी हाथ उंगली फड़ के मैंने उतों ले जा रही है, ते आज तख्त उते बैठ के पातशाह मुंह याद आ रहे हैं जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। इसलिए का आसान तरीका यही है कि जिसमें कुछ प्राप्त हो जो मुझे निकलता जरूर कुछ है। सूर्य प्रकाश ने जिस वेले सारे वॉल्यूम लिख ले जिन्हों की तादाद 14 है, 14 पुस्तक लिखन के बाद आखिर ते फिर जी लाइन लिखी ने यही है मैं समझना सिख का न्यारापन। आप कहते ने दोस कहां, दोस कहां सूरज बिना मन एक बिचारा, एक गल मैं अपनी मन अंदर विचार के लिख रहा हाँ या पूरी अकल नाल लिख रहा हाँ, सूरज तो बगैर रोशनी नहीं हो सकती। दोस कहां सूरज बिना मन एक बिचारा, ते तरबो कहां सिखी बिना भव सागर पारा, कोई सागर तर नहीं सकता बगैर सिखी तो। ये मैं गुरु पातशाह के जीवन विचों जो मैं मिले लिख रहा हाँ, बस यही न्यारापन है, किसी थान से होर सागर तरन का रस्ता नहीं है। आसान जो सानू पिता दे के गए ये न्यारापन कायम रहे, जब लग रहे खालसा न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, जब कहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रति, मैं वही नहीं दियांगा, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
राव हे ससु हे करुणा, हे राव हे ससु हे करुणा, मेरी अब विनती कृपा कर श्याम